मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस एकेडमी फॉर एक्सलेंस के सैटरडे ऑडियो गाइडेंस में मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सैटरडे है, डेट है 16 मई 2015, यानी कि यदि हम इसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट से जोड़ें तो लगभग ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 3 महीने 10 दिन का वक्त अभी तैयारी के लिए आपके पास है। मित्रों पिछले सैटरडे के ऑडियो में मैंने आपसे प्री के जनरल स्टडीज़ की तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा की थी और ख़ासकर उसके टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि किस तरीके से जो 3.5 महीने का वक्त बचा हुआ है इसका आप बेहतर तरीके से उपयोग करके अपनी जो सफलता है उसे सुनिश्चित कर सकें। डेफिनेटली मित्रों हालांकि वो ऑडियो पूरी तरह से था तो प्री के कंप्लीट प्रिपरेशन पर डेफिनेटली, लेकिन उसमें जोर मैंने जनरल स्टडीज पर दिया था। और ये जो आज का ऑडियो गाइडेंस है इसमें अब हम उसका जो सेकेंड पेपर है जिसे हम सी सेट के पेपर के नाम से जानते हैं उसकी तैयारी की रणनीति के बारे में बातें करेंगे। मित्रों इससे पहले कि मैं सी सेट की तैयारी की रणनीति के बारे में बात करूं, एक महत्वपूर्ण सूचना है और इससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वो ये है कि अब जो सी सेट का पेपर है आपके लिए उतना चैलेंजिंग और उतना डरावना नहीं रह गया है जितना कि यह पहले था। आप लोगों को मित्रों मालूम है कि पिछले साल सी सेट के पेपर को लेकर के जबरदस्त आंदोलन छिड़ा था, खासकर दिल्ली में स्टूडेंट्स ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया इसके खिलाफ व्यक्त की थी। और सच पूछे तो मुझे भी इस बात की खुशी है दोस्तों कि हमारे युवा साथियों ने इसके खिलाफ जो अपनी आवाज उठाई थी उसमें लेख के रूप में मेरी भी आवाज शामिल थी। इसको लेकर के मैंने कई बहुत तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण लेख दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में लिखे थे, जो एडिटोरियल पेज पे छपे थे, बहुत ही प्रोमिनेंसी के साथ वो छपे थे। और मुझे पता लगा था कि वहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं, खासकर मुखर्जी नगर में रहने वाले स्टूडेंट जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसे पढ़ा, उसकी कॉपियाँ वितरित की और उसमें उठाए गए प्रश्नों को लेकर के पार्लियामेंट में उस पर चर्चा भी हुई। और सच पूछिए तो उसमें जो पॉइंट्स दिए गए थे उससे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको काफ़ी कुछ तथ्य भी मिले। और अंततः पिछले साल सरकार ने जो सी सेट के पेपर में अंग्रेजी कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन्हें निकाल दिया था। हालांकि चूंकि पेपर सेट हो चुका था तो क्वेश्चंस तो पेपर में थे लेकिन उन्हें हल करना अनिवार्य नहीं था, जरूरी भी नहीं था, क्योंकि उनके मार्क्स जुड़ने न जुड़ने का कोई प्रश्न नहीं रह गया था। इसके बाद मित्रों फिर सरकार ने बाद में एक कमेटी बैठाई और उस पर बातचीत चल रही थी कि इस सी सेट के पेपर का क्या किया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की मांग थी पहले तो अंग्रेजी को लेकर के थी, बाद में फिर वो बढ़ते बढ़ते सी सेट के पेपर को हटाने की मांग होने लगी। और डेफिनेटली उसके साथ जो ट्रांसलेशन होता है, जो हिंदी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हिंदी का ट्रांसलेशन होता है उसको लेकर के भी आपत्ति थी, जो बहुत जायज भी थी। और अभी जबकि आपके पी एग्जाम को होने में लगभग 3.5 महीने बाकी हैं, अब सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है दोस्तों। और वो निर्णय ये है कि सी सेट का पेपर तो रहेगा लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी कि इसमें आपको 33% केवल मार्क्स लाने हैं, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सी सेट का पेपर था वो कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अधिक फेवर में था, जिसमें नो डाउट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे क्योंकि उनका मैथ्स होता है, मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो उससे उनको बहुत माइलेज मिल जाती थी। जो कैट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके बहुत फेवर में ये पेपर था, और वो सच पूछे तो मेंस और फाइनल रिजल्ट जो आते थे उसमें दिखाई भी देता था, क्योंकि अगर वो प्री में बहुत अधिक स्टूडेंट्स साइंस के आते हैं या आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर मेंस और आपके फाइनल रिजल्ट में भी उन्हीं का दबदबा रहेगा, और ये हो भी रहा था। दोस्तों जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें सेम प्लेइंग फील्ड की बात होती है कि सब को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वो समान अवसर जैसी बात नहीं थी, इसलिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालांकि जो मांग हो रही थी उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जो गांवों की बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन एज सच ऐसी बात मुझे लगती नहीं थी। लगता था कि जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कुछ सीमा तक जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मित्रों, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि अब जो भी स्टूडेंट तैयारी करके परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो लॉस और प्रॉफिट की भाषा में सोचना उन्हें बंद कर देना चाहिए। उसका कारण है, कारण यह है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको नो डाउट कि फायदा हुआ है। मतलब फायदा तो आर्ट्स ऐसे स्टूडेंट्स को हुआ है जो जिनके लॉजिक, जिनका मतलब आप कह लीजिए कि ग्रेजुएशन के लेवल पर जब वो पढ़ाई करते हैं तो लॉजिक से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। जिस तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं उस लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैथ्स से ज्यादा मतलब नहीं होता है, कंप्रिहेंशन से थोड़ा बहुत मतलब तो होता रहता है। ऐसे स्टूडेंट्स को अब डेफिनेटली फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा दोस्तों कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे इसमें बहुत हाई स्कोर करते थे। मतलब मेरे पास प्रमाण है कि आउट ऑफ 200 178.2 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 90% मार्क्स। अब सोच के देखिए कि अगर आप 90% एक पेपर में स्कोर कर लेते हैं तो जनरल स्टडीज के पेपर में आप अगर कितना भी कम स्कोर करते हैं तो आपका टोटल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इनमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स थे। अगर हम पिछले साल तक की बात करें तो आप देखिए कि जो जनरल स्टडीज के जो क्वालिफाइंग परसेंटेज थे वो थे 15%। मतलब जनरल स्टडीज में कम से कम 15% तो आपको लाना ही होगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो सी सेट का जो स्कोर, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 35% थे। अब वो 90% अगर उधर ले आते हैं मान लीजिए, और इधर अगर वो 40% भी ले आते, 40% तो 90+40 जोड़ दीजिए तो 130%। बोला के होता नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए 130% उसको हाफ कर दीजिए, इसका मतलब है कि 65%। तो ऐसे स्टूडेंट जो 90% सी सेट में ला रहे हैं, जो ला ही रहे थे, और जनरल स्टडीज में मात्र 40% ला रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो रहा था। अब आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट को इसके बराबर रख लीजिए तो मतलब आप समझिए कि वो सी सेट में तो 90% ला ही नहीं सकता है। सी सेट में वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकता है 70%, और जो जनरल स्टडीज है उसमें 70% स्कोर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मैं समझता हूं कि जनरल स्टडीज में अगर आप 50% 55% भी स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि पेपर ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए, 70 और 50 को जोड़ दीजिए, 70 और 40 को जोड़ दीजिए, 65 और उसको जोड़ दीजिए, तो वो 60 के आसपास रहेगा, 60 से नीचे नीचे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो उससे बाहर हो रहे थे। एक बहुत ही एक डेटा जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं वो इस बात को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, अब वो स्थिति खत्म हो गई है। अच्छा, मजेदार बात इसमें ये देखिए कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स अब जो रखा गया है वो है 33% और पहले था वो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स सी सेट का। इसका मतलब है कि अब आप क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के परेशान मत होइए कि यार ये क्या रख दिया, इसमें तो कुछ छोड़ ही देते। नहीं, पिछले साल के स्कोर से भी आप अगर 2% कम स्कोर करते तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, बशर्ते कि आप जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर कर सके। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अब जो प्री एग्जामिनेशन है वो बेसिकली जनरल स्टडीज पर बेस्ड एग्जाम हो गया है। जहां तक इंजीनियरिंग और कैट एग्जाम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का सवाल है, मैं उन्हें इंश्योर करना चाहूंगा कि वो कहीं भी नुकसान में उस तरीके से एज सच नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, आप इसको इस रूप में बड़े रियलिस्टिक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। यहां तो ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेज पर थोड़े सा नुकसान हो सकता है, लेकिन जो मेंस का जो मेन जो एग्जाम होता है मेंस का, उसमें तो जनरल स्टडीज में आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी ही चाहिए, क्योंकि चार चार पेपर उसी पर है। अगर हम इंटीग्रिटी मॉरलिटी वाले पेपर को छोड़ दें, जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर को, तो तीन पेपर तो जनरल स्टडीज पर ही बेस्ड है। तो अगर आपकी इस स्टेज पर जनरल स्टडीज की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर मेंस में आपके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए जनरल स्टडीज में तो आपको अच्छी तैयारी करनी ही चाहिए, और अगर आप जनरल स्टडीज में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों फिर नुकसान का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन के सिनेरियो को अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे तो आपको लगेगा, आपको मतलब जो इंजीनियरिंग और कैट के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कि हमें भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि सभी के लिए अब ज्यादा समानता के अवसर इसमें मिल सकेंगे। तो मित्रों एक तो मुझे ये बात आप लोगों से क्लियर करनी थी ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में किसी तरह का कोई ऐसा भ्रम न रह जाए कि उनके साथ न्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो। थोड़ी सी मैं बात बता दूं दोस्तों कि पिछली बार जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, थोड़ी सी मैं उनके बारे में चर्चा कर दूं। हालांकि अब वो क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे इस साल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि सी सेट में चूंकि बहुत हायर स्कोर होता था इसलिए टोटल क्वालिफाइंग स्कोर जो है ना वो बढ़ जाता था। जैसे पिछले साल का अगर हम 2013 आपको 2013 के कट ऑफ मार्क्स अभी मेरे पास हैं, चलिए मैं उन्हीं की चर्चा कर लेता हूं। उनको अगर हम देखें तो इसमें है मित्रों, क्योंकि 2014 के कट ऑफ मार्क्स अभी हमको मिले नहीं हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है फाइनल तब तक कट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं, और फाइनल रिजल्ट आएगा आपके प्री से थोड़े दिन पहले, क्योंकि 2014 में जो मेंस हुए हैं उसका अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हमारे पास वो अवेलेबल भी नहीं है। हम अभी 2013 के कट ऑफ मार्क्स का सहारा लेकर के अपनी बात कहना चाहेंगे। ये जरूर है कि जो होते भी है ना आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1-2% ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज लगभग लगभग स्टैटिक चलता है। जो जनरल कैटेगरी में जो स्कोर था फ्रेंड्स, जो टोटल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं, मतलब जनरल स्टडीज और सी सेट को मिलाकर के, वो कट ऑफ मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए 60.25, ओबीसी के लिए 55.5, एससी के लिए 51.75 और एसटी के लिए 50%, ये कट ऑफ मार्क्स थे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चूंकि सी सेट को अब इससे बाहर कर दिया है जो कि बहुत हाई स्कोर प्रोवाइड कराता था स्टूडेंट के लिए, तो इनमें ऑलमोस्ट 7-8% की कमी आ जानी चाहिए, यानी कि जो 60% का जो स्कोर है मैं समझता हूं कि 52-53% आ जाना चाहिए, 7-8% आप लगभग सभी में कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट इस बारे में बहुत श्योर है कि 55% तो वो स्कोर कर ही लेगा, एकदम 100% श्योर माइनस मार्किंग के बावजूद सब कुछ के बावजूद, तो उसका प्री में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। हां, उससे ओबीसी वाले इससे 5% कम कर लें, एससी वाले उससे थोड़ा सा मतलब अगर इसको मैं 55 मानूं तो ओबीसी वाले उसको 50 पर ला सकते हैं, जो एससी वाले हैं वो इसको लगभग 49 पर ला सकते हैं, नहीं मतलब समझ लीजिए कि अगर वो 50 पर लाते हैं तो इसको 47 पर ला सकते हैं, और जो एसटी वाले हैं वो उससे लगभग 45 पर ला सकते हैं, इतने का फर्क पड़ सकता है। तो मित्रों लेकिन जो आपकी कोशिश होनी चाहिए रणनीति के तहत, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि 60% होनी चाहिए, उससे कम की कोशिश नहीं होनी चाहिए ताकि हम इसके बारे में किसी तरह का कोई चांस ना लें। तो मित्रों हमारी जो रणनीति होगी अब वो 60% स्कोर करने की रणनीति होगी टोटल में की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि यहां हम सी सेट की बात कर रहे हैं तो अब मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपसे उसकी चर्चा करना चाहूंगा। पिछली बार ये जो कट ऑफ मार्क्स की चर्चा मैंने छोड़ दी थी, मैंने यही सोचा था कि मैं सी सेट की तैयारी को बताने के बाद या उस ऑडियो में बताते समय मैं कट ऑफ मार्क्स की चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि अब सी सेट के मार्क्स पूरी तरह से आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने से बाहर कर दिए गए हैं तो इसीलिए अब स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, और वैसे मुझे लग रहा था कि सरकार एग्जाम से पहले डेफिनेटली इस बारे में कोई ना कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेगी ही। तो मित्रों अभी तक जो मैंने आपसे शेयर किया है, देखिए वो न्यू क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए हैं 33%, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, और मैंने ये भी आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस की थ्योरी को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया, वो ये मान करके चलें कि उनके लिए इस मायने में अच्छा हो गया कि इसी लेवल पर वो मेंस की जो जनरल स्टडीज की तैयारी है बहुत अच्छा उन्हें करना चाहिए ताकि मेंस में वो और अच्छे से क्वालिफाई कर सके और उसका फायदा उन्हें प्री में भी मिल सके। मित्रों अब मैं आता हूं कि जो अभी तक जो हमारे सामने हमारे पास जो पेपर है 2011 से आपको मालूम है कि सी सेट की शुरुआत हुई है, जो 2011 से लेकर के 2014 तक सी सेट का जो पेपर हमारे पास है सी सेट के, या अब मैं सीधे केवल सी सेट के बारे में बात करूंगा, उसमें जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस के किस किस पॉइंट से किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, यानी इसको ये कह दिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि किस किस हिस्से से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि तभी हम अपनी सही रणनीति बना पाएंगे कि किस किस की तैयारी में हमें कितना कितना वजन देना चाहिए, कितना कितना मेहनत कितनी कितनी मेहनत करनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो मैं इसमें 2011, 12 और 13 की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, कभी कभी मैं 13 की बात करूंगा क्योंकि थोड़े से पुराने डेटा हो गए हैं, लेकिन उसमें एक ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी है। तो मैं बेहतर होगा कि मैं चर्चा करूं 2014 की, क्योंकि आपको कोई आंकड़ों में उलझना नहीं है, हम तो एक सामान्य रणनीति बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए कि हम अपने बात को बहुत प्रामाणिक तरीके से कह सकें, दिखा सकें और उस पर हमारा भरोसा हो सके, इसलिए मैं ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों ये जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है ये 8 भागों में इसे विभाजित किया गया है और इसके 2014 के प्रश्न देखिए कि कितने पूछे गए हैं किस किस हिस्से से, और जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 80, वो 100 नहीं थी, 80 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न मतलब टोटल जो पेपर था वो 200 नंबर का था। तो आप अब इतना गणित लगा लीजिए कि एक प्रश्न कितने नंबर का था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उस 80 क्वेश्चंस में थे कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्टर से थे, आप इसको देखें। अनुच्छेद जिसको हम कंप्रिहेंशन कहते हैं उसमें उससे 26 क्वेश्चन पूछे गए, आउट ऑफ 80 26 क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट 30%। इसके बाद है दोस्तों तर्क क्षमता जिसको हम लॉजिक कहते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे 24 कहने का मतलब है कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 25%। इसके बाद है मित्रों मैथ्स से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वे थे 18, लेकिन इसमें दोस्तों कंसिस्टेंसी नहीं है, 2014 में 18 पूछे गए तो 2013 में सिर्फ 9 पूछे गए और 2012 में 3 पूछे गए, 2011 में 7 पूछे गए, 2014 में ज्यादा ही क्वेश्चन मैथ्स से पूछ लिए गए थे, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर दे रहा हूं कि मैथ्स से 10% क्वेश्चन पूछे गए परसेंटेज में अगर हम कहेंगे तो। जो फिगर एंड ग्राफ्स से जो क्वेश्चन आए थे मित्रों, आकृति एवं आरेख वगैरह जिसे हम कहते हैं, उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इट मीन्स नियर अबाउट 7.5% क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, 2013 में इसे 14 पूछ लिए गए थे, 2012 में तो 5 थे लेकिन 2011 में फिर से 14 पूछ लिए गए थे, तो हम मान सकते हैं कि 8-10% पर यह चलता रहेगा। जो इंग्लिश कंप्रिहेंशन था मित्रों वो 2013 में जो पूछे गए थे वो 7 पूछे गए थे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, तो अब ये जो 7 क्वेश्चंस हैं ये कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंग्लिश वाले। लेकिन मित्रों एक बहुत विचित्र सी चीज ये थी कि डिसीजन मेकिंग पर पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि 2013 में 6, 2012 में 7 और 2011 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि डिसीजन मेकिंग पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी से जो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे अब वो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से तो पूछे जाएंगे नहीं। तो मित्रों ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, राइट। चूंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसलिए आप थोड़े से परेशान मत होइएगा, लेकिन मैं चलिए एक बार इसे दोहरा देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बोल रहा हूं, अनुच्छेद से 26, तर्क क्षमता से 24, मैथ्स गणित से 18, आकृति एवं आरेख से 5, अंग्रेजी अनुच्छेद से 7, और निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग से जीरो, ये क्वेश्चन पूछेगा, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए कि अब हम इसको स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखिए मित्रों, स्ट्रेटेजी में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट सोचता है कि यार ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, ये बहुत अच्छी बात है। वहां तो अच्छी बात है जहां कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने पर आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, वहां तो होना ही चाहिए ही, क्योंकि मेन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सिद्धांत ही है दूसरों से बेहतर होना। लेकिन मित्रों, यहां दूसरों से बेहतर होना नहीं है, इसमें तो सिर्फ यह है कि आप क्वालिफाइंग कर जाए, मतलब अपने को सिद्ध कर ले कि हाँ मैं इस लेवल तक हूं। मान लीजिए कि कोई सी सेट में 100% भी स्कोर कर लेता है तो कहीं अलग से उसको रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये मत ले लीजिएगा आपकी आपको हल नहीं करना है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग से इसका दबाव खत्म हो सके। और वो इसलिए दोस्तों कि अगर यहां आपका दबाव खत्म होगा तो आप इस समय का उपयोग और इस मानसिक क्षमता इसका उपयोग आप जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन में कर सकेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सी सेट का पेपर है वो बहुत से स्टूडेंट को कोई भूत जैसा दिखाई देता था कि बाप रे क्या होगा, कैसे होगा। स्वाभाविक है कि चक्कर घन्नी हो जाता है दिमाग, लॉजिक का पढ़ करके और फिर रिलेशनशिप के पढ़ करके और मैथ्स के पढ़ करके, और हमारे दिमाग की कैपेसिटी उस तरह की नहीं, मैं कैपेसिटी की मतलब वो उलझाव वाली चीजों को एक्सेप्ट करने का अभी हमारे दिमाग का ढांचा नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट का होता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का होता है, तो वो उनको सामान्य सी बात लगती है, हमको वो बहुत उलझाने वाली बात लगती है, चिड़चिड़ाने लगते हैं अंदर से। तो स्ट्रेटजी अगर एक बार आप बना लेंगे, और उस स्ट्रेटजी की थ्योरी सिर्फ ये होगी कि हमें क्वालिफाई करना है, यानी कि 35% मार्क्स स्कोर करना है, इतने मिल जाएं, इतने श्योर हो जाएं, फिर मिले या न मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और ये साइकोलॉजिकल लेवल पर आप बिल्कुल फैसला कर लें कि आई हैव टू स्कोर एट एनी कॉस्ट 35% मार्क्स। ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए, परीक्षा में अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो एटलीस्ट 35% मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की नहीं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, अब मैं कुछ चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो अनुच्छेद जिसको हम कहते हैं, उसे 30% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30% सबसे ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। देखिए, मैथ से भी, आपके लॉजिकल लॉजिक से भी 30% के लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो लॉजिक होता है उसमें फिर अलग तरह की चीजें होती, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अलग तरीके की चीजें नहीं होती, सभी का स्वरूप एक जैसा होता है। आप देखिए कि एक कोई हिस्सा दे दिया जाएगा, कोई गद्यांश जिसको हम कहते हैं दे दिया जाएगा, और फिर क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको इसका फार्मूला पता लग गया, फार्मूला आपने पकड़ लिया, तो इसमें बड़े आराम से आप 75% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बड़े आराम से। और मित्रों, आप कहेंगे कि फिर वो फार्मूला क्या है, तो फिलहाल चूंकि मेरे ऑडियो गाइडेंस का ये विषय नहीं है, जो स्टूडेंट रहे हैं मेरे फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के, डिटेल में उनको ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्लास में इसकी चर्चा की थी, और बाद में मुझे मेल भी बाद में बहुत से आए कि उन्होंने जब उस फार्मूले का उपयोग करके जब प्रैक्टिस करनी शुरू की तो वो दंग रह गए कि उसमें 80% to 100% वो स्कोर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि 75% स्कोर करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, और मैं बताना चाहूंगा कि इसका फार्मूला जो भी संक्षिप्त में मैं बता सकता था किताब के फॉर्मेट में, वो मैंने आप आईएएस कैसे बनेंगे किताब में बताया है, और मुझे विश्वास है कि शायद वो किताब आप लोगों के पास होगी, उससे आप देख लेंगे। तो मित्रों, अगर कॉम्प्रिहेंशन में आप 75% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, और जो फिगर एंड ग्राफ्स चित्र जो हमने आकृति एवं आरेख, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10% ही होते हैं, और इससे अगर आप 75% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो मैं अब आपको एक गणित बताता हूं, या और डिसीजन मेकिंग को चलिए हम इसी में ले लेते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में भी आप 75% स्कोर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग से 8% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं परसेंटेज की भाषा में बात कर रहा हूं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन लगभग लगभग 1.25% को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम ऑलमोस्ट मान करके चल रहे हैं कि वो लगभग 7% क्वेश्चंस का रिप्रेजेंट करेगा वो। अगर हम सोचेंगे 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे डिसीजन मेकिंग से। तो मित्रों, इस तरह से आपको अब मैं इसका कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप इस कैलकुलेशन की जटिलता में मत पड़िए, मैं तो आपको केवल भरोसा दिलाने के लिए कह रहा हूं, है ना। तो कंप्रिहेंशन से 75% अगर आप स्कोर करते हैं, राइट, और अगर आप फिगर एंड ग्राफ से 75% स्कोर करते हैं और डिसीजन मेकिंग से भी 75% स्कोर करते हैं, तो मित्रों आपका जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो 35% हो जाएगा। 40% मतलब ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं जो टोटल उसकी बात बता रहा हूं, अगर आप नंबर आप क्वेश्चंस जोड़ेंगे और इसके बाद उसको 75% में कन्वर्ट करेंगे कि मैं हम 75% ठीक करके आएंगे, तो आपका स्कोर 35% हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे कंप्रिहेंशन, फिगर एंड ग्राफ्स और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हल करने हैं, तो आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि हमें अपने सी सेट की तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा जोर इन तीनों पर ही देना चाहिए। इन तीनों पर ही देने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये सबसे आसान होते हैं, जटिल नहीं होते, घुमावदार नहीं होते और आपको परेशान करने वाले भी नहीं होते। इनके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनुच्छेद के बारे में बताया कि आप आईएएस कैसे बनेंगे, किताब में मैंने फार्मूला बताया हुआ है, ठीक इसी तरह से डिसीजन मेकिंग का बहुत अच्छा फार्मूला उसी किताब के उसी चैप्टर में दिया हुआ है। वो भी मैंने यहाँ फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ के डिसीजन मेकिंग को भी, और जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में जो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी, और स्टूडेंट्स को मालूम है कि उनको बहुत मजा आया था और बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए थे वो कि हम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जोर इन तीन पर देना चाहिए, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़े आराम से, वो तो बहुत हाईएस्ट स्कोर करेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये रणनीति उनके लिए है जो मैथ्स से घबरा रहे हैं। तो अब जब वो मैथ्स से घबरा रहे हैं, तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि तुम शेर के मुंह में हाथ दो, हालांकि वो शेर है नहीं, लेकिन अब लग रहा है आपको, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ करके उन चीजों को निकाला है जो शेर का मुंह नहीं है, ये बकरी का मुंह है, गाय का मुंह है, इसमें आप हाथ डाल सकते हैं क्योंकि इससे आप डर नहीं रहे हैं। तो ये आपका टोटल स्कोर हो गया दोस्तों 35%, मतलब आप क्वालिफाई कर गए। अब हम सेफर साइड में चलते हैं, अब हम क्या करें, क्या हम इतना ही करें और छोड़ दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब क्या होना चाहिए दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके लॉजिक के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिक के कितने क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स में तो 28% मतलब 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैथ्स में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली एवरेज का आता है, औसत का, और औसत सबसे सरल है। गणित में अगर सबसे सरल कुछ है तो औसत है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रतिशत, लेकिन चलिए प्रतिशत में क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ दे तो आप उसमें फंस सकते हैं, लेकिन एवरेज में तो फंसते ही नहीं है। एवरेज में सबका टोटल और इसके बाद उसका किसी का भाग दे देना होता है, समझ लीजिए थोड़ा सा एवरेज बहुत आसान है। मैं दूसरे फार्मूले समझने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ब्याज का फार्मूला समझिए, आप समय दूरी का फार्मूला समझिए, आप काम और उसकी क्षमता का फार्मूला समझिए, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिंपल एवरेज के फार्मूले पर जा रहा हूं। हमेशा हर साल आप पेपर उठा के देखिए, एक या दो क्वेश्चन उस पर पूछा गया है, और इसके बाद मित्रों जो तार्किक क्षमता है, तार्किक क्षमता में तीन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब तीन तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और जो बड़े आप आराम से हल कर सकते हैं और करते भी होंगे आप। मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता। एक तो होता है रिलेशनशिप, संबंध, फलाना फलाना है, वो उसका भाई है, भाई से बहन है, बहन से ये है, तो अब वो उसका क्या है। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके इसको तैयार पकड़ना चाहेंगे तो बड़े आराम से आप पकड़ लेंगे। इसका भी फार्मूला मैंने बताया हुआ है, डायरेक्शन, दिशा, दिशा ज्ञान। एक व्यक्ति अपने बिंदु से चल 2 किलोमीटर चल करके दाहिने 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से लेफ्ट में 4 किलोमीटर चल करके सीधे 6 किलोमीटर चलने के बाद इस पर आता है, तो अब वो अपने निर्धार जहां से चला था वहां से किस स्थान पर है। या वो व्यक्ति शुरू में तीसरे नंबर पर खड़ा है और आखिरी में चौथे नंबर पर खड़ा है, लेकिन बीच वाला ये है, तो वो उसके बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, मतलब इस तरह की दिशाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना सरल होता है ये, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, लेफ्ट में चला एक लाइन खींच लीजिए, फिर राइट में मुड़ा वहां राइट, तो लाइन को घुमाते चले जाइए, आपका चित्र बन जाएगा और आपको पता लग जाएगा वो किस जगह पर है, किस दिशा में है। एकदम सरल है, लेकिन जब पूछा जाता है तो लगता है कि बाप रे ये तो कितना कठिन है। वो कर लीजिए। इसी तरह से मैंने बताया कि प्लेसिंग का है मित्रों, कि कौन किस स्थान पर खड़ा है तो किस स्थान पर क्या है। मजेदार है मित्रों कि इस पर लगभग लगभग केवल ये तीन पर, एवरेज चार पर कह लीजिए, एवरेज, रिलेशनशिप, डायरेक्शन एंड प्लेसिंग, केवल अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो इस पर लगभग लगभग 8 से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको पूरे पिछले पेपर्स को पढ़ने के बाद, छांटने के बाद, उतना सब कैलकुलेशन के बाद बता रहा हूं। तो ये 10% क्वेश्चन पूछे गए मित्रों, तो ये बड़े आराम से हल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें तो आपको 100% में 100% लाना है, इसमें तो छोड़ने की गुंजाइश है नहीं। मैं उसमें 75% कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्यों कहा है, उसमें इसलिए मैंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो छोड़ दीजिए आप, चलिए फिगर ग्राफ्स में कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन इसमें तो अगर एवरेज का एक पूछा गया है तो वो कर नहीं करना है, तो इसमें आपको 100% स्कोर करना है। तो 35% आप उसमें लेकर के आए, 10% 8 to 10% आपका यहां स्कोर हो गया, तो मित्रों आपका 43 to 45% स्कोर हो गया। यू आर इन वेरी वेरी सेफर साइड, आप बहुत अधिक सेफर साइड में चले गए, आपको कोई डर नहीं है मित्रों। ये मैंने आपसे थोड़ी सी रणनीति के बारे में बात की, मेरी समझ से चीजें ज्यादा उलझाव वाली आपको नहीं लगी होंगी, और यदि ऐसे लग रही हो तो आप फिर से इसको चला करके देख लीजिए अपने ऑडियो को, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अब इसको, अभी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आपकी सुविधा के लिए, मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, दोहरा देता हूं मित्रों। जो कंप्रिहेंशन होता है उसे 30% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप 75% स्कोर कर सकते हैं। फिगर एंड ग्राफ्स से 10% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी आप 75% स्कोर कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग से 8 to 10% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी आप 75% स्कोर कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आपने कॉम्प्रिहेंशंस, फिगर एंड ग्राफ्स और डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी तैयारी कर ली और केवल 75% स्कोर कर लिया इसमें से, तो आपका जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो 35% हो जाएगा, यानी कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन एक सेफर साइड में और चलने के लिए, चलने के बाद जो रिमेनिंग जो हमारा सिलेबस बचता है, उसमें से जो लॉजिक और मैथ्स, केवल अगर हम इन दो को लें तो ये इससे 35% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35% मार्क्स के। इसमें जो स्ट्रेटजी मैंने जो आपको बताई है वो ये है कि एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनशिप से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लेसिंग से भी ऑलमोस्ट एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से ये टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 9% to 10% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो आप हल कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत से हल कर सकते हैं। और मित्रों यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये जो आपका स्कोर होगा, जो बाद वाला जो मैथ्स और लॉजिक का स्कोर मैंने बताया है, ये हो जाएगा 8 to 10%, और पहले का स्कोर था आपका 35%, तो टोटल स्कोर आपका 43-45% हो जा रहा है, जो आपको इसके क्वालिफाइंग के लिए बहुत 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 ज्यादा सेफ कर देता है। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी सावधानी रखने की बात पर आता हूं। ब्रॉड पॉलिसी आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, नंबर एक, आपके पास समय वही है, 2 घंटे का समय है, 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले तो आप जो सरल प्रश्न हैं उनको सॉल्व कीजिए, जो कठिन क्वेश्चन हैं उन पर अपनी माथा पच्ची करना बंद ही कर दीजिए। ये मान के चलिए कि मुझे इनको छोड़ना है। देखिए, ये बात मैं जनरल स्टडीज के पेपर के लिए नहीं कहूंगा, माथा पच्ची कीजिए यदि आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं तो, लेकिन यहां उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सरल आपको लग रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, और सेकेंड पॉइंट, जो कठिन लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने को कंट्रोल में रखिए। और तीसरी बात ये मित्रों कि किसी भी उत्तर के बारे में अनुमान तो लगाइए ही मत, गैस बिल्कुल मत कीजिए। मतलब आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो माइनस मार्किंग है उससे आप बच सकें, माइनस मार्किंग होने ही मत दीजिए, छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं है, आपको केवल 33% स्कोर करना है। आप कितना भी इसमें ले आएंगे वो आपको कहीं कोई अतिरिक्त माइलेज नहीं देगा, रत्ती भर भी नहीं देगा। तो आप गैस तो बिल्कुल कीजिए ही मत, अनुमान बिल्कुल मत लगाइए, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता नहीं। जहां आपको बिल्कुल आप कंफर्म है कि नहीं यही उत्तर होगा, आप उसी को कीजिए। दोस्तों, जो जटिल क्वेश्चन हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो सरल क्वेश्चन लग रहे हैं बल्कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा सही लगाइए यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो। और इस लिहाज से मित्र, जो कंप्रिहेंशन है उसमें आपको ज्यादा समय लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा, पहले तो पूरे के पूरे उसके अनुच्छेद को पढ़ करके उस पर कमांड एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और फिर उसके प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ करके और उनके सटीक उत्तर वहीं से ढूंढने पड़ेंगे। और ये जो कंप्रिहेंशन है आपके सामने किस किस तरह के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पेश करता है, कहां आपको सावधानियां रखनी है, किस फार्मूले के तहत आपको उन्हें पढ़ना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मित्रों आप आईएएस कैसे बनेंगे किताब में दी हुई है। यदि आप उचित समझते हैं तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप ले लेंगे, लेकिन यदि आपके पास कोई दूसरी किताब है या आपको ऑलरेडी मालूम है तो बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी उसी प्रैक्टिस को, उसी फार्मूले को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माध्यम नहीं। माध्यम सही होना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन यानी कि इसी माध्यम से ही आपको रिजल्ट हासिल करना है। दोस्तों, अंतिम बात यह कि आपको हड़बड़ी में बिल्कुल प्रश्न हल नहीं करने हैं, अगर कुछ छूट रहे हैं तो बिल्कुल खुशी उनको छोड़ दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुमान के आधार पर एक भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मत दीजिए। तो मित्रों, ये कुछ ब्रॉड पॉलिसी थी, या जो सतर्कता होनी चाहिए जिन बातों को लेकर के आपको इस प्रश्न को, इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उसकी मैंने चर्चा की है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ऑडियो है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो मदद करेगा ही, रास्ता दिखाएगा ही, और यदि कुछ ऐसा हो सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात भी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सबको ये ऑडियो कितना उपयोगी लगा, आप प्लीज मुझे बताएं, या और क्या क्या चीजें होती तो बेहतर होता, क्या आप और चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे बताएं, ताकि मैं धीरे धीरे अपने आप को अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत के हिसाब से अपने को बदल सकूं और आपकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। क्योंकि मित्रों, इस मायने इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से कर सकूं, इस लिहाज से मुझे आपके फीडबैक की, आपकी प्रतिक्रियाओं की जरूरत होती है, क्योंकि वही मेरे पास एकमात्र मेरा मार्गदर्शक है, मेरा लाइट हाउस है। मित्रों, आप सबको सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।